नमस्कार, आज हम एक बहुत ही गहरे चिंतन पर बात करने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का उद्बोधन यह चिंगारी दावा नल बनेगी। ये एक समझिए एक जागृति का आह्वान है समाज पर और खास तौर से नारी की स्थिति पर।
बिल्कुल, और इसमें पूज्य गुरुदेव ने समाज को मतलब सही दिशा में ले जाने के लिए एक बहुत साफ दृष्टि दी है। तो आज हम इसी के सार को समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्य बातें क्या हैं।
हाँ, और शुरुआत ही देखें तो कितनी शक्तिशाली है। एक रूपक से करते हैं। समाज एक गाड़ी है और पुरुष और स्त्री वो उसके दो पहिए हैं। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सोचिए अगर एक पहिया छोटा हो जाए, जैसे पंचर हो जाता है,
हाँ,
तो गाड़ी ठीक से चलेगी नहीं, संतुलन बिगड़ेगा, हो सकता है पलट भी जाए।
बिल्कुल, ये सीधे सीधे समाज की प्रगति में जो असंतुलन है उसी की तरफ इशारा है।
हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये तो असलियत है, जमीनी हकीकत।
सही कहा, और इसी बराबरी के महत्व को समझाने के लिए वो अर्धनारीश्वर की बात भी करते हैं, है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल, शिव पार्वती राधा कृष्ण सीताराम इनका जिक्र करते हैं। अर्धनारीश्वर मतलब शिव और शक्ति का वो एक रूप जो दिखाता है कि दोनों हिस्से बराबर हैं, अलग नहीं किए जा सकते, जैसे हमारे दो हाथ या दो आंखें, कोई भेद नहीं।
बिल्कुल, और देखिए इस बात को और पुख्ता करने के लिए पूज्य गुरुदेव हमें इतिहास में ले जाते हैं, प्राचीन भारत में। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि तब स्थिति काफी अलग थी।
अच्छा, कैसे?
तब स्त्री और पुरुष में ऐसा भेद नहीं था, मतलब जो बाद में आया।
हाँ, कुछ उदाहरण भी देते हैं शायद।
हाँ बिल्कुल, जैसे कैकेयी वो दशरथ के साथ युद्ध में गई थी।
हाँ सुना है।
और द्रौपदी वो तो अर्जुन की सारथी बनी थी।
सोचिए, सारथी।
और गार्गी का तो क्या कहना, राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि से शास्त्रार्थ किया उन्होंने।
वाह।
अनुसुईया जैसी कितनी ही ऋषि पत्नियां तो वेदों की मंत्र दृष्टा थी, मतलब उन्होंने वेदों की ऋचाओं को जाना, अनुभव किया।
मंत्र दृष्टा, ये तो बहुत बड़ी बात है।
हाँ, उस समय नारी को सचमुच शक्ति स्वरूपा माना जाता था, देवी। वो जो या देवी सर्वभूतेषु वाली भावना है वो समाज में थी।
तो मतलब अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो साफ है कि तब समाज के दोनों पहिए बराबर चल रहे थे, गाड़ी आगे बढ़ रही थी।
बिल्कुल,
लेकिन फिर संतुलन बिगड़ा कैसे, क्या हुआ?
हाँ, यहीं से पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि स्थिति बदली, मध्यकाल आया और नारी पर कई तरह के बंधन लगने शुरू हो गए।
जैसे?
जैसे घूंघट प्रथा, पर्दा आ गया, बाल विवाह होने लगे, छोटी उम्र में शादी, उन्हें शिक्षा से, दूसरे अधिकारों से दूर किया जाने लगा, और दहेज, दहेज की कुप्रथा ने तो समाज में बहुत गहरी जड़ें जमा ली।
इसे वो दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं।
हाँ बिल्कुल।
क्या वो इसका कोई कारण भी बता दें, ये बदलाव क्यों आए?
हाँ, वो थोड़ा संकेत देते हैं कि शायद उस समय की असुरक्षा, जैसे बाहर से आक्रमणकारी आते थे तो शायद बेटियों को बचाने की मजबूरी में बाल विवाह जैसी चीजें शुरू हुई होंगी।
अच्छा, एक मजबूरी के तहत।
हाँ शायद, लेकिन वो फौरन ये भी कहते हैं कि कारण चाहे जो भी रहा हो, आज के समय में ये बंधन बिल्कुल गलत है, अस्वीकार्य है।
और यहाँ वो एक बहुत तीखा सवाल भी उठाते हैं शायद।
बिल्कुल, बहुत सोचने वाला सवाल। वो पूछते हैं कि अगर पुरुषों को ऐसी स्थिति में रखा जाए जैसे स्त्रियों को रखा गया,
मतलब
पुरुषों को घूंघट में रखा जाए, घर में बंद कर दिया जाए, पढ़ने लिखने ना दिया जाए, तो क्या वो मानेंगे, क्या वो स्वीकार करेंगे इसे?
ये तो सोचने वाली बात है, जाहिर है नहीं करेंगे।
बिल्कुल, तो फिर ये दोहरा मापदंड क्यों?
और इसका नतीजा क्या हुआ समाज पर, इस असंतुलन का?
नतीजा बहुत गंभीर हुआ। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहें तो समाज का लगभग आधा हिस्सा, हमारी नारी शक्ति, वो एक तरह से लकवाग्रस्त हो गई।
लकवाग्रस्त?
हाँ, दूसरों पर आश्रित, अविकसित, उनकी जो अपनी क्षमताएं थी उनका वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। और ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं, ये पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की क्षति है।
उन्होंने शायद संख्या भी बताई थी।
हाँ, उन्होंने कहा कि लगभग 30 करोड़ महिलाएं अपनी क्षमता का उपयोग न कर पाने के कारण एक तरह से समाज पर भार जैसी बन गई हैं।
30 करोड़, ये तो बहुत बहुत बड़ी संख्या है और वाकई राष्ट्रीय क्षति है।
बिल्कुल।
तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और रास्ता क्या है इससे निकलने का?
देखिए, यहीं पर पूज्य गुरुदेव एक बहुत बड़ी और मैं कहूंगी साहसिक बात कहते हैं। वो सीधे पुरुषों को संबोधित करते हैं।
अच्छा।
हाँ, वो कहते हैं कि भाई ये बंधन पुरुषों ने ही लगाए हैं, तो प्रायश्चित भी उन्हें ही करना होगा, उन्हें ही आगे आना होगा इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए सक्रिय रूप से।
प्रायश्चित, ये तो बहुत भारी शब्द है।
हाँ,
मतलब ये सिर्फ सुधार की बात नहीं, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है।
बिल्कुल, यही वो कहना चाह रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पूज्य गुरुदेव का जो मिशन था वो सिर्फ पूजा पाठ या अध्यात्म तक ही सीमित नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
वो सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने को भी उतना ही जरूरी मानते थे।
हाँ, वो साफ कहते हैं, बेइंसाफी के विरुद्ध लोहा लेना ये भी आध्यात्मिकता का हिस्सा है।
वो ब्रह्म बल और शास्त्र बल
दोनों की बात करते हैं।
ब्रह्म बल मतलब ज्ञान विवेक,
और शास्त्र बल मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस, हिम्मत।
अच्छा, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण देते हैं, वो
जी
एक हाथ में माला दूसरे में भाला।
बिल्कुल वही, और इसीलिए वो नारी जागरण का इतना जोरदार आह्वान करते हैं।
तो क्या वो कुछ ठोस कदम भी बताते हैं कि करना क्या है इस जागरण के लिए?
हाँ हाँ, बिल्कुल, उन्होंने कुछ मुख्य काम बताए। पहला, लोगों की सोच बदलना, दिमाग में ये बात बैठाना कि स्त्री पुरुष बराबर है,
ये तो सबसे जरूरी है, मानसिकता बदलना।
हाँ, दूसरा, दहेज जैसी जो कुप्रथाएं हैं उनको जड़ से खत्म करना। तीसरा, शिक्षा का फैलाव, खासकर महिलाओं में, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, स्वावलंबी बने।
और चौथा,
महिलाओं के अपने संगठन बने, उन्होंने महिला शाखा कहा।
हाँ,
ताकि वो संगठित हो, अपनी आवाज उठा सकें।
महिला शाखा, और इस पूरे अभियान को वो चिंगारी से दावानल बनाने की बात करते हैं।
हाँ बिल्कुल, वो होली की छोटी सी चिंगारी का उदाहरण देते हैं, कहते हैं इस चिंगारी को दावा नल बनाना है, जंगल की आग की तरह फैलाना है।
वाह।
और बताते हैं कि शांति कुंज से ये नारी जागरण अभियान शुरू होगा, वहां से प्रशिक्षित कन्याएं महिलाएं निकलेंगी।
अच्छा, प्रशिक्षित कार्यकर्ता?
हाँ, वो गांव-गांव शहर-शहर जाएंगी, गीत संगीत कथा प्रवचन इनके जरिए लोगों में चेतना जगाएंगी, और साथ में परिवार को मजबूत करने पर भी बहुत जोर है।
परिवार कैसे?
वो चाहते हैं कि घर एक गुरुकुल जैसा बने, और गृहिणी घर की महिला वो प्राचार्या हो जो नई पीढ़ी को सही संस्कार दे।
घर की प्राचार्या, ये तो बहुत सुंदर विचार है।
है ना?
सच में पूज्य गुरुदेव का ये उद्बोधन बहुत सोचने पर मजबूर करता है, हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। अंत में वो हनुमान जी का उदाहरण देते हैं कि जैसे वो संजीवनी बूटी लाए थे मूर्छित लक्ष्मण के लिए, वैसे ही हमें भी अपनी सोई हुई मातृशक्ति को जगाना है, संजीवनी देनी है।
बिल्कुल,
ताकि 60 करोड़ भारतीय मिलकर 120 करोड़ हाथों की ताकत बने और देश को आगे ले जाएं।
और शायद आज के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि हम सब अपने अपने स्तर पर पूज्य गुरुदेव की जलाई इस चिंगारी को, इस दावा नल को आगे बढ़ाने में क्या कर सकते हैं।
हाँ, ताकि समाज की गाड़ी के दोनों पहिए सचमुच बराबर चल सके, कंधे से कंधा मिलाकर।